भाग तीन, पहला शीर्षक। हरिकथा वाचक जयरामचर कांतापुरा का एक लोकप्रिय हरिकथा वाचक है। वह ग्राम के अन्य हरिकथा वाचकों से भिन्न है। वह लोगों को देवी देवताओं से संबंधित कथाएं सुनाता है एवं गांधी जी के स्वराज्य आंदोलन एवं ब्रिटिश शासकों के विषय में लोगों को बताता है। वह लोगों के पास जाकर उन्हें उपदेश देते हुए कहता है कि उन्हें विदेशी वस्तुओं से घृणा करनी चाहिए एवं गांधी जी का अनुसरण करना चाहिए। अगला शीर्षक, हमारा गांधी। मूर्ति कांतापुरा ग्राम का एक शिक्षित नवयुवक है। वह सामान्य कमजोरियों वाला एक साधारण नवयुवक है। मूर्ति को एक हाथी के समान ईमानदार माना जाता है। लोग उसे हमारा गांधी, हमारे ग्राम का महात्मा आदि नामों से पुकारते हैं। मूर्ति को लोग छोटा पहाड़ एवं गांधी जी को बड़ा पहाड़ समझते हैं। अगला शीर्षक, मूर्ति। मूर्ति नरसम्मा नामक विधवा का एकमात्र पुत्र है। नरसम्मा की 6 अन्य जीवित संतानों में सारी लड़कियां ही है जो विवाहित है। नरसम्मा मूर्ति को बहुत प्रेम करती है। मूर्ति उसकी सबसे छोटी संतान है। उसे आशा है कि मूर्ति एक दिन उप जिलाधिकारी बनेगा। मूर्ति उस समय कॉलेज में पढ़ता था जब वह अपने ऊपर गांधी जी के प्रभाव को महसूस करने लगा। तत्पश्चात वह एक गांधी व्यक्ति बन जाता है। उन दिनों में पूरे देश में सैकड़ों हजारों नवयुवकों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी एवं गांधी के नाम पर स्वयं को गिरफ्तार करवा लिया था। मूर्ति भी उन नवयुवकों में से एक था। ग्राम में मूर्ति की गतिविधियों एवं चरित्र को देखकर ग्रामीण उसे गांव का गांधी कहने लगे। पढ़ाई छोड़ने के पश्चात मूर्ति स्वयं को ग्रामीणों की भलाई के कार्य करने में व्यस्त रखने लगता है। वह मुख्यतः गरीब लोगों का शुभचिंतक है। मूर्ति छुआछूत मिटाने को ज़्यादा महत्व देता है क्योंकि वह उन हरिजनों के साथ काम करता है जिनका ब्राह्मण साथ नहीं देना चाहते। लोगों को प्रेरित करने में मूर्ति असाधारण क्षमता रखता है। जब वह शहर से लौटता है तो वह तुरंत ही ग्राम में गांधी जी के कार्यों की व्यस्तता करने में जुट जाता है। स्वतंत्रता के लिए गांधी जी के संघर्ष के राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक तीन मुख्य तत्व है तथा ये तीनों ही मूर्ति में विद्यमान है। अगला शीर्षक, भट्ट कांथापुरा का प्रथम ब्राह्मण। भट्ट कांथापुरा में निवास करने वाला प्रथम ब्राह्मण है। वह एक साहूकार भी है। उसने अपना जीवन बहुत ही साधारण स्तर से प्रारंभ किया था। भट्ट तिरस्कारणीय व्यक्ति है। गांव में उसकी काफी जमीन जायदाद है। वह कांथापुरा के रोचक लोगों में से एक है। भट्ट ने नितांत गरीबी से अपना जीवन प्रारंभ किया था। उस समय उसके पास बांधने के लिए एक लुंगी एवं एक तांबे का लोटा ही था, लेकिन अब उसके पास कई एकड़ जमीन है। उस समय वह आगामी त्योहार अथवा धार्मिक दिनों विषय में तत्काल सूचना देता था। वह अंतिम संस्कार के भोजन के निमंत्रण को भी झटपट स्वीकार कर लेता था। वह तुरंत उस घर में पहुंच जाता था जहां पर उसे कोई धार्मिक कर्मकांड करना होता था। वह गांव के दूसरे ब्राह्मण रमन्ना, जो कि पूजा पाठ में भट्ट की मदद करता था, से भी पहले वहां पहुंच जाता था। तब भट्ट बहुत ही आनंद के साथ चपर चपर भोजन करता एवं फिर डकार लेता तथा खाए गए भोजन को व्यवस्थित करने के लिए एक लोटे पानी का सहारा लेता ताकि और अधिक भोजन खा सके। अगला शीर्षक, भट्ट एक साहूकार। वर्तमान समय में भट्ट एक समृद्ध साहूकार है। वह गांव वालों से अत्यधिक धन कमाता है। वह धार्मिक कर्मकांडों, ब्राह्मण के स्तर से उठकर स्वयं को बड़ी जमीन जायदाद का स्वामी बना लेता है। कांथापुरा के ग्रामीणों के झगड़ों आदि को निपटाने के लिए वह एक वकील की तरह भी काम करने लगता है। वह यह कार्य इसलिए करता है क्योंकि इसमें उसे धन की प्राप्ति भी होती है। वह कांथापुरा, संतूर, पुरड़ तथा होनाली अन्य गांवों में 37 एकड़ वर्षा वाली जमीन एवं 90 एकड़ सूखी जमीन का मालिक बन जाता है। गांव में लगभग सभी ने भट्ट से थोड़ा सा या ज्यादा ऋण लिया हुआ है। भट्ट स्वयं को दूसरों से समृद्ध एवं सर्वोच्च भी समझता है। वह पाखंडी है तथा ग्राम से छुआछूत दूर करने के प्रति पूर्णतः उदासीन है। गांव में जब मूर्ति हरिजनों के साथ मिलता जुलता है तो भट्ट उससे घृणा करने लगता है। भट्ट यह भी पसंद नहीं करता है कि लड़कियां स्कूल एवं कॉलेजों में लड़कों के साथ पढ़ाई करें। भट्ट की पत्नी की मृत्यु के पश्चात भट्ट के जीवन पर भाग्य ने जैसे थूक ही दिया, क्योंकि उसकी दूसरी पत्नी 12 रुपये नगद एवं 5 एकड़ भूमि से ही थी। अब भट्ट के ग्राहकों में सिर्फ मजदूर एवं श्रमिक ही नहीं, वरन गांव के पटेल एवं पटवारी भी थे जो उससे ऋण लेते थे। इस प्रकार से भट्ट का धन गुणोत्तर ढंग से बढ़ता गया और वह बड़ी धन राशि के ऋण देने लगा। भाग्य पुनः भट्ट पर कृपालु हो जाता है। वह अत्यधिक अमीर होता जाता है और अधिक से अधिक ऋण देने लगा। वह ऋण पर ज्यादा ब्याज लगाता तथा निर्धनों एवं जरूरतमंद लोगों को उनकी परेशानी में ऋण देकर उन्हें धोखे से लूटता रहा। अंतिम शीर्षक स्वामी। एक दिन भट्ट को एक स्वामी से मुलाकात करने का मौका मिलता है। वह स्वामी हाल ही में अपनी मैसूर की यात्रा से लौटा है। जब भट्ट मूर्ति को हरिजनों के साथ देखता है तो उसे भय है कि इस प्रकार से एक दिन हरिजन भी ब्राह्मणों के समान होने का तथा मंदिर में प्रवेश करने का दावा कर सकते हैं। उस स्वामी के अनुसार जो कोई भी ब्राह्मण किसी हरिजन से बातें करते पाया जाए तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। समाप्त।